आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। मुख्तलिफ रियासतों में सियासी पार्टियों के आला रहनुमा इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं, जबकि लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए मुहिम में तेजी आ गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा और 7 मई को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आज एक स्कूल बस के पलट जाने के नतीजे में 6 बच्चे हलाक हो गए। इंसाफ की बैन अलावामी अदालत ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो गजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए खुराक की फौरी बुनियादी फराहमी को यकीनी बनाए। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा चुनाव का पहला मरहला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुख्तलिफ रियासतों में सियासी पार्टियों के आला रहनुमा इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 102 सीटों पर इस माह की 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे।
आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली भौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं।
इससे पहले दिन में उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जब कभी मुल्क में एक कमजोर और गैर मुस्तहकम हुकूमत बनी है तो दुश्मनों ने फायदा उठाया है और दहशतगर्दी ने अपनी जड़ें फैलाई हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने फौजियों के लिए एक ओहदा एक पेंशन स्कीम नाफिज की है। उन्होंने यह भी कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत ने फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी फराहम की हैं, जो भारत में ही तैयार की गई हैं। इससे उनकी जिंदगी को बचाने में मदद मिली है। वजीर आजम ने उत्तराखंड की मुआशी तरक्की को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए सयाहत को फरोग देने के मकसद से हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जिक्र किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में दो बड़े मसाइल हैं, जिनमें एक बेरोजगारी और दूसरी महंगाई है, लेकिन दीगर मसाइल को ही ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वो आज राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो 30 लाख लोगों को रोजगार फराहम करेगी।
हम दो काम करने जा रहे हैं। पहला काम 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं और दूसरा काम ठेकेदारी प्रथा को हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं करेगा, उसे परमानेंट जॉब दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके परिवार की रक्षा होगी।
अग्निवीर स्कीम पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इक्तदार में आई तो इस स्कीम को मनसूख कर दिया जाएगा। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विकसित भारत मुहिम को एक नई तवानाई फराहम करेगा। वो आज राजस्थान के करौली में एक रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 वर्षों में बीजेपी ने उन सभी मसाइल को हल किया है जिसे कांग्रेस हल नहीं कर पाई थी और उन्हें अधूरा छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई दहाइयों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन एनडीए हुकूमत ने 25 करोड़ भारतीयों को गुर्बत से बाहर निकाला है। कांग्रेस ने तो किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आज 10 करोड़ किसान सम्मान निधि हासिल कर रहे हैं और यह पहला मौका है कि जब कोई सरकार मवेशियों के लिए भी फिक्रमंद है। वजीर आजम ने कहा कि 7 दिन 24 घंटे काम करके 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के अजम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। उन्होंने जयपुर में एक अवामी रैली के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानात पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया, जहां उन्होंने राजस्थान और दफा 370 को हटाने के दरमियान ताल्लुक पर सवाल उठाया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दिया गया था। जनाब मोदी ने कांग्रेस लीडरों से सवाल किया कि वो राजस्थान का दौरा करें और वहां कुनबों से जाकर मिलें। सीनियर बीजेपी लीडर और उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा हलके के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो खुशामद परस्ती पर मबनी पॉलिसी अपना रही है। उधमपुर पंचायत और पंचायत के शहरी इलाकों में सिलसिलेवार इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी जलसों से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस वाल्मीकियों, दीगर पसमांदा तबकों, ओबीसी, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दर्ज फहरिस्त जातों और पनाह गुजीनों को हकूक देने के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि यह कांग्रेस की साबिका सरकारों के इम्तियाजी नुक्ते नजर की वजह ही है कि आजादी के 70 साल के बाद भी वाल्मीकि शहरियत के अपने हकूक हासिल नहीं कर पाए हैं और उन्हें मौके से भी महरूम रखा गया है जिससे कि वो अपनी अहलियत की बुनियाद पर रोजगार के लिए दरखास्त दे सकें। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज आसाम के डिब्रूगढ़ में कई इंतखाबी रैलियों से शिरकत की। जनाब सरमा ने कहा कि मोदी हुकूमत के दौरान आसाम में 80 लाख लोगों को गुर्बत से निकाला गया। इसी दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आज गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम लगाया कि बीजेपी झूठे वादे कर रही है। कांग्रेस के रियासती सदर भूपेश कुमार बुरा, रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई और आसाम गण परिषद के सदर अतुल बोरा ने भी राय दहिंदगान को रागब करने के लिए कई अवामी जलसे किए। आम आदमी पार्टी के लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवत मान कल पार्टी उम्मीदवारों के लिए तिनसुकिया और सुनितपुर में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों की 94 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में गुजरात की सभी 26 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, आसाम और मगरबी बंगाल की 4-4, गोवा और दादर ओ नगर हवेली और दमन उदेव की 2-2 सीटों, नीज जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुलतवी किए गए बैतूल पार्लिमानी हलके के लिए भी नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। बैतूल पार्लिमानी हलके के लिए दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाने थे, ताहम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मौत की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। अब तीसरे मरहले के तहत इस सीट पर चुनाव होंगे। इस मरहले के लिए 19 अप्रैल तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं जबकि 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क भर में मजहबी जोशो खरोश और अकीदत के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रमजान के एक महीने के रोजे पूरे होने पर मनाया जाता है। अकीदतमंदों ने ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। बाद में लोगों ने एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा कि यह त्यौहार रमजान के एक महीने के रोजों और दुआओं के बाद मनाया जाता है और यह त्यौहार मोहब्बत और अखुवत का पैगाम देता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद उल फित्र हमें हमदर्दी, सखावत और इत्तेहाद के उन अकदार की याद दिलाती है जो इस त्यौहार के पसे पर्दा हैं और हमारे गुनागुनियत के हामिल मुल्क की अकदार को उजागर करती हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि इस मौके पर हमदर्दी, इज्तिमाइयत और अमन के जज्बे को मजीद वसअत मिले। तेलंगाना में आज ईद उल फित्र पूरे मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद उल फित्र हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में मसाजिद और ईदगाहों के अलावा खुले मैदानों में नमाज अदा की गई। बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने मस्जिद में आज सुबह नमाज दोगाना अदा की। लोगों की एक बड़ी तादाद तारीखी चारमीनार के नजदीक मक्का मस्जिद और ईदगाह मीर आलम में भी जमा हुई जहां उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। पेश है एक रिपोर्ट।
हैदराबाद में आज ईद उल फित्र के मौके पर हजारों मुस्लिम अकीदतमंदों ने ईदगाह मीर आलम और मक्का मस्जिद में नमाज ईद अदा की। रिवायती लिबासों में मलबूस लोग ईदगाहों में और मसाजिद में जमा हुए और नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। लोगों ने रिवायती पकवानों और शीर खोरमा वगैरह से एक दूसरे की जियाफत के वसी इंतजाम के तनाजुर में हजारों नमाजियों ने मसाब टैंक के हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर रियासती गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब किया और गरीबों में जकात और सदकतुल फित्र अदा किया। तेजी से करीब आते हुए लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर बहुत सी सियासी पार्टियों के लीडर حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کی روایت کے تناظر میں تقریب میں شرکت کرتے نظر آئے. آکاشوانی نیوز کے لیے حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ میں فیصل حبیب.
ہریانہ کے مہندر گڑھ ضلع میں آج ایک اسکول بس کے پلٹ جانے کے نتیجے میں 6 بچے ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. یہ حادثہ انہانی گاؤں کے نزدیک پیش آیا. پولیس نے بتایا کہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہریانہ کی وزیر تعلیم سیما تریکھا نے مہندر گڑھ میں اسپتال کا دورہ کیا جہاں 12 بچے زیر علاج ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ہریانہ کے وزیر اعلی نایاب سنگھ نے بھی اس افسوسناک حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا. چنڈی گڑھ میں جاری کیے گئے ایک بیان میں وزیر اعلی نے ان بچوں کے کٹمبوں کے تئیں اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا جو اس المناک حادثے میں ہلاک ہو گئے. انہوں نے دعا کی کہ اس حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین کو صبر و سکون ملے. جناب سنگھ نے کہا کہ کسی بھی لاپرواہی کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا. اور انہوں نے مزید کہا کہ ان سبھی زخمی بچوں کو تمام ضروری امداد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکیں. ہریانہ کے ٹرانسپورٹ کے وزیر اسیم گوئل نے بتایا کہ تمام اسکول بسوں کے فٹنس ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں تاکہ تمام ضلع ایجوکیشن افسروں کو ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے. انصاف کی بین الاقوامی عدالت میں ججوں نے متفقہ طور پر اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی آبادی کے لیے کسی تاخیر کے بغیر خوراک کی بنیادی فراہمی کو یقینی بنانے کی خاطر تمام ضروری اور مؤثر کارروائی کرے. بین الاقوامی عدالت نے آج کہا ہے کہ غزہ میں فلسطین کے لوگ بدتر حالات سے دوچار ہیں اور فاقہ کشی کا شکار ہیں. جنوری میں بین الاقوامی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسی کسی بھی کارروائی سے گریز کرے جو نسل کشی کنونشن کے تحت آتی ہو. عدالت نے اسرائیلی فوجوں سے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی نہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہا. آج کے حکم نامے میں عدالت نے مزید کہا کہ اسرائیل کو پورے غزہ میں فلسطینیوں کے لیے خوراک، پانی، بجلی، طبی دیکھ بھال اور ضروری دواؤں کی سپلائی سمیت بنیادی خدمات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے. پاکستان کے جنوب مغربی بلوچستان میں کل رات ایک سڑک حادثے میں کم از کم 17 افراد ہلاک اور 38 لوگ زخمی ہو گئے. اہلکاروں نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین کو لے جا رہا ایک ٹرک ٹکرا کر ہب ضلع میں ایک گہری تنگ کھائی میں جا گرا. انہوں نے بتایا کہ ٹرک کی رفتار بہت تیز تھی اور ایک موڑ کاٹتے وقت ڈرائیور ٹرک پر قابو نہ رکھ سکا. یہ زائرین خزدر شہر میں شاہ نورانی صوفی کے مزار کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور وسطی مہاراشٹر کے علاقوں میں اگلے 3 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ اس دوران ان علاقوں میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. موسمیات کے محکمے نے مزید کہا کہ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ، بہار اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اس مہینے کی 13 تاریخ تک جبکہ راجستھان میں اس مہینے کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ اوسط بارش ہونے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے نے جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں کل تک بارش اور برفباری کی پیش گوئی کی ہے. شمال مشرقی بھارت کے علاقوں میں اگلے 6 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری جاری رہنے کا امکان ہے. IPL کرکٹ میں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز کے خلاف کھیلتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو نے 19 اوورز اور 2 گیندوں پر 178 رن بنا لیے. ممبئی انڈینز نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. کل رات جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 3 وکٹ سے شکست دے دی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مختلف ریاستوں میں سیاسی پارٹیوں کے اعلی رہنما انتخابی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں جبکہ لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے مہم میں تیزی آ گئی ہے. لوک سبھا چناؤ کے تیسرے مرحلے کے لیے نوٹیفکیشن کل جاری کیا جائے گا اور 7 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ہریانہ کے مہندر گڑھ ضلع میں آج ایک اسکول بس کے پلٹ جانے کے نتیجے میں 6 بچے ہلاک ہو گئے ہیں. انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ میں فلسطینی لوگوں کے لیے خوراک کی فوری بنیادی فراہمی کو یقینی بنائے. اور IPL کرکٹ میں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.